सुर्खियों में
यह आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में विशेष चर्चा। भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया।
नमस्कार, आज विशेष परिचर्चा के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के हुए 150 साल के उपलक्ष्य पर संसद में हुई चर्चा के संदर्भ में। चर्चा को अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों से सुसज्जित करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने। जगदीश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
नमस्कार।
श्रोताओं, परिचर्चा शुरू करेंगे, मगर आइए उससे पहले सुने कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम पर जारी चर्चा में क्या कहा।
आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े बड़े शिप, उस पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बनी, और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरफ विस्तार होता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वीओ चिदम्बरम पिल्लई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बना तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई तमिल देशभक्ति गीतों में वंदे मातरम की श्रद्धा साफ साफ नजर आती है।
प्रधानमंत्री ने कहा आगे अपने वक्तव्य में कि सन 1947 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश के स्वाधीनता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बना। जगदीश जी, मैं चाहूंगी कि आप इस कथन पर प्रकाश डालें।
जब बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की थी 1875 में, तो उस समय वो गीत अलग से उन्होंने लिखा था
जी,
और उस समय उन्होंने जो बात उस गीत के बारे में लिखी कि ये गीत जो है वो देश को जो सुप्त अवस्था में उसको प्राण शक्ति देगा और ये देश की जागृति का मंत्र बनेगा। आज गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसका उल्लेख भी किया कि बंकिम बाबू ने उस समय क्या लिखा था उस गीत के बारे में, और इस राष्ट्र के पुनर्जागरण का वो माध्यम भी बनेगा, ये भी बंकिम बाबू ने लिखा था और वो आज सच होता दिख रहा है। तो 1875 में जब ये गीत लिखा गया तो ये अलग से आइसोलेशन में लिखा गया, लेकिन बाद में बंकिम बाबू ने अपने उपन्यास में इसको आनंद मठ में इसको शामिल किया
जी,
और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इसे लगता है कि भाई ये कोई धार्मिक गीत है, पर जो भारत का जो विचार है, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका उल्लेख आज गृहमंत्री अमित शाह ने किया, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका और उल्लेख किया था कि जो अपने राष्ट्र के प्रति देखने की भारत के लोगों की दृष्टि है वो ये है कि ये
भारत का यानी कि कल्चरल सोशल कॉन्शियसनेस,
ये हमारी माता है
जी,
और जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम इसके लिए कर सकते हैं वो हमको करना है, और जो कुछ हो रहा है वो इसके आशीर्वाद से, कृपा से हो रहा है। कल तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो वेद का जो मंत्र है वो भी उल्लेख किया था कि माता भूमि ही और पुत्र पृथ्व्याहम, ये भूमि हमारी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र
हूँ।
तो यही बात वंदे मातरम में और बंकिम बाबू ने बहुत सुंदर लिखे है। देखिए, माँ को तो विश्व में कोई तुलना नहीं है, परमेश्वर के बाद माँ की तुलना होती है, और भारत उन कुछ ही देशों में है जहाँ पर कि माँ की और तुलना की माँ के बराबर दर्जा राष्ट्र को दिया गया है। और उस परिप्रेक्ष्य में जब ये वंदे मातरम लिखा और जब जैसा बंकिम बाबू ने भविष्यवाणी की थी कि ये मंत्र बनेगा देश के जागरण पुनर्जागरण का, महर्षि अरविंद ने तो उसको कहा था कि ये आत्मा का पुनर्जन्म है भारत की
जी,
जिसका उल्लेख गृहमंत्री ने आज किया।
उस समय की जो भारत की जो सुसुप्त आत्मा थी
उसका पुनर्जागरण, ये महर्षि अरविंद को आज गृहमंत्री ने बड़े विस्तार से कोट किया कि क्या क्या लिखा उसको, तो ये एक मंत्र बना। और प्रधानमंत्री ने कल जब अपनी बात कही तो इसका अर्थ यही था कि चूंकि इसके 150 साल हुए हैं और इन 150 सालों में जब से ये रचा गया है तब से ये भारत के जागरण का, भारत के बलिदान का, शौर्य का, पराक्रम का और उसके विकास का मंत्र रहा है, इसलिए इसको मनाया जा रहा है और इसीलिए इस पर संसद में बहस की जा रही है, और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले हुआ करता था।
जगदीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उस वक्त का माहौल, उस वक्त का परिदृश्य कैसा रहा होगा।
देखिए ये बड़ी मतलब अगर आज गृहमंत्री ने और कल प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में और आज गृहमंत्री ने राज्यसभा में भी उस समय की परिस्थितियों का कुछ थोड़ा सा उल्लेख किया है कि बंकिम बाबू ने ये किस पृष्ठभूमि में रखा। उस समय बंगाल में नवाबों का शासन था और नवाबों के शासन में भी समाज पर बहुत जुल्म हुए और उसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा यह सब कुछ समाज पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की। तो इसके कारण हमारा जो समाज है वो एक तरह से भयभीत हो गया। उसको जागरण करने के लिए, उसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें शक्ति भरने के लिए, उसमें उत्साह भरने के लिए बंकिम बाबू ने यह गीत लिखा। तो उस समय की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि समाज दमन अत्याचार और सब तरह के अत्याचार से, और जैसा मैंने कहा कि हमारे समाज ने अपने आप को समेट लिया, जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति हजारों साल पुरानी है और हजारों साल में हुए आक्रमणों के बाद भी ये समाज टिका रहा और ये राष्ट्र टिका रहा। आज एक बहुत मजे की बात जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, आज गृहमंत्री ने राज्यसभा में कही, उन्होंने कहा कि भारत जो है किसी कानून से नहीं बना, किसी एक्ट से नहीं बना, न किसी युद्ध से बना, न किसी संधि से बना, ये स्वयमेव बना हुआ देश है, जो कि बहुत मतलब दुनिया में ऐसे देश नहीं है कोई, बहुत कम देश है। तो यह स्वयमेव बना हुआ देश है और इसकी सीमाएं अपने आप, और इसीलिए यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बंकिम बाबू का गीत जो राष्ट्रगान है वो इसको बहुत सटीक अर्थों में मतलब परिभाषित करता है। इतना सुंदर उस गीत में इस पूरे राष्ट्र का वर्णन है,
शुभ्र ज्योत्सना का वर्णन है,
मतलब मैंने आप कह नहीं सकते, कमलाम कमलम अमलाम, इतनी बातें हमारी माता राष्ट्र के लिखी है कि ज्ञान विज्ञान शौर्य वीरता तीनों देवियों की, मतलब सब कुछ है, इनोवेशन भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, वीरता भी है, कल तो वीरों का भूषण है कहा था प्रधानमंत्री ने, तो ऐसा गीत दुनिया में कहीं नहीं है।
मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता जो हमारी संस्कृति चलती आई है उसका कहीं ना कहीं समावेश देखने को मिलता है।
यस, मैं मानता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले जब गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने की बात कही, मेकाले की शिक्षा के बारे में उन्होंने बात कही कि मेकाले ने जो काम किया 200 वर्ष पहले उसके अब 200 वर्ष पूरे होने में कितने 30 साल बाकी है, उसमें ये गुलामी की मानसिकता समाप्त होनी चाहिए। तो गुलामी की मानसिकता शिक्षा आचरण व्यवहार सब तरह से वो आ गई और लोगों को लगने लगा कि ये तो 47 में बना देश है, 47 में बना देश नहीं है, और ये देश हजारों साल पहले से बना हुआ है और उसको जागृत किया वंदे मातरम जैसे गीतों ने। तो अब वो चीजें धीरे धीरे जाग रही है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई युवा भारत के बारे में बहुत जागरूक है, भारत पर अगर भारत की संस्कृति पर, भारत की भाषा पर, सभ्यता पर, भारत के रहन सहन पर, भारत के त्योहारों पर कोई आक्रमण होता है तो बहुत तेजी से और बहुत उग्रता से प्रतिकार करता है। तो इसका अर्थ यह है कि लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मॉडर्निटी के साथ अगर हमने अपनी जड़ों से हम कट गए, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और अपनी सभ्यता को छोड़ दिया, अपनी विरासत को छोड़ दिया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जो अभी अलग सा उदाहरण है, पोप जो है वो अभी लेबनान गए और लेबनान पहले क्रिश्चियन देश हुआ करता था, जब वो गए तो उसी पारंपरिक रीति से जैसे क्रिश्चियनिटी के जमाने में वो उसका स्वागत होता था, लोग अपनी जड़ों से नहीं कटते, जो लोग अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते, चाहे वो अपना मत बदल ले, चाहे वो अपना मजहब या पंथ बदल ले, कभी नहीं भूलते। तो ये इस समय एक अद्भुत संगम है और मोदी सरकार ने सब तरह के कार्यक्रमों में ये हम दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी जड़ों से बिना कटे और मॉडर्निटी को अपनाया है। जितना हम मॉडर्न है आज साइंस के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में और इकोनॉमी के फील्ड में, उतना मॉडर्न बहुत कम और ऐसे देश है, विकासशील देश। तो मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट जंक्चर है जिसमें भारत 2047 तक इसको एक आधुनिक समर्थ शक्तिशाली और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला जो राष्ट्र है उसको खड़ा करने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में वंदे मातरम जैसे गीत जो हमारी बहुत बड़ी विरासत है
जी,
वो बहुत काम आएंगे और इसीलिए 150 साल मनाया जा रहा है, देश साल भर में कार्यक्रम चलने वाले हैं इसके।
जी श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे, परिचर्चा में और भी सवाल लेंगे, मगर उससे पहले आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा ये सुनिए।
वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत, वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे, तो पहले वंदे मातरम का ध्यान कर बैठक।
जगदीश जी, कितना जरूरी है आज की तारीख में इस पर बात करना, युवाओं तक इसका संदेश पहुंचना कितना आवश्यक है?
बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत हमारा जनगणमन है, ये राष्ट्रगान के रूप में संविधान ने स्वीकार किया है। और देखिए, आज गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बात का उल्लेख किया कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने और ये प्रस्ताव स्वयं रखा कि वंदे मातरम अभी गाया भी जाए और उसको संविधान में राष्ट्रगान के रूप में उसका दर्जा दिया जाए। गृहमंत्री ने और कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का बराबर उल्लेख किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों में 1937 तक पूरा राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया जाता था पहली बार, और 1905 में 1904 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने इसको गाया था, उन्होंने इसको संगीतबद्ध किया था। एक ऐसा गीत है जो आज भी आपको बोलेंगे अगर आप पूरा, मैं तो पूरा जानता हूँ उसको और गाता भी हूँ, तो जब आप उसको गाते हैं जैसा महर्षि अरविंद ने लिखा है कि इसके तीनों स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक रूप है, और पहला स्थूल रूप इसका वर्णन है जो शब्दों में है, फिर इसका जो सूक्ष्म रूप है जो आपके भावों को चेतना है, और आध्यात्मिक जिससे आपका मन शांत होता है। तो ये सचमुच वैसा ही है वंदे मातरम। और वंदे मातरम को कितनी धुनों में गाया गया है, कितनी धुनें बनाई गई है, जो जिसको मिला उसने उस धुन में उसको बांट दिया, और हर धुन हर गीत आपको ऐसा लगता है, और कहीं भी ये नहीं लगता कि हम किसी देवी की उपासना कर रहे हैं, किसी पूजा घर में मंदिर में आरती उतार रहे हैं, भारत माँ की आरती उतार रहे हैं, यही लगता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोग इसको जबरदस्ती इशू बना रहे हैं। और देखिए, एक और बात आज होम मिनिस्टर ने कही है कि 1947 में जब हमको स्वतंत्रता मिली उस दिन सुबह आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की वो वंदे मातरम गाएं। आकाशवाणी में उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है, और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने इतना सुंदर गाया कि सारा देश भाव विभोर हो गया। विभाजन होने के बाद के देश में ये बात हुई है।
जी, संविधान की चेतना और वंदे मातरम के स्वर कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे पूरा करते हैं दूसरे?
देखिए, जो वंदे मातरम है वो सारा कुछ जो कि भारत के लिए है, भारत के बारे में है और भारत की समृद्धि के बारे में है। संविधान भी हमारा भारत के बारे में है, ये भारत के लोगों के लिए है, लेकिन ये भारत के बारे में है। भारत में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, नई पीढ़ियां खड़ी होती रहेंगी, लेकिन ये भारतीय जीवन मूल्यों को और प्रतिनिधित्व करता है हमारा संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के संविधानों का और अध्ययन किया और उसके बाद जो संविधान बनाया, यहाँ तक कि फ्रांसीसी फ्रेंच क्रांति के जो तीन सिद्धांत उन्होंने लिए उसमें बंधुत्व हमारा ये भारतीय भाव है, तो ये भारतीय भाव उन्होंने जोड़ा है उसमें। तो हमारा संविधान जो है वो भारतीय जीवन मूल्यों की, भारत की सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है, उसी तरह से अभिव्यक्ति जिस तरह से वंदे मातरम है। वंदे मातरम चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन का गीत था, लेकिन ये देश के, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि देश की आत्मा का पुनर्जागरण है, और अब तो हमारा देश कहाँ है, हम सब देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं आज दुनिया में, हमारी क्या शक्ति है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक को हमारा प्रधानमंत्री मना कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है।
जगदीश जी, आपने अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में विशेष चर्चा। भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में